नित्यानन्दम् श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज विशेष दिवस है गुंडीचा मार्जन का। कल रथ यात्रा होगी जगन्नाथपुरी में, तो आज के दिन जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है। क्यों? कल जगन्नाथपुरी के मंदिर से जगन्नाथ जी जाएंगे कहाँ? गुंडीचा मंदिर में। तो एक दिन पहले सफाई होती है। साल में एक बार गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, क्योंकि जगन्नाथ जी जाते हैं वहां एक हफ्ते के लिए। तो साल भर जो है वो मंदिर खाली रहता है, तो काफी धूल और जो है मैला हो जाता है वो। तो आज के दिन जो है, जब चैतन्य महाप्रभु थे 5 साल पहले, तो उन्होंने स्वयं गुंडीचा मंदिर की सफाई की थी भक्तों के साथ में। तो वो लीला चैतन्य चरितामृत में है, जिसे हम पढ़ के सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई की, और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान क्या बनाया? शीतल और उज्ज्वल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बन सका। श्री गुंडीचा मंदिर मात वृंद सम्मार्जयन चालन तह स गौर सचित्य शीतल मोज्ज्वल कृष्णोपवेश चकार जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गौरचंद्र की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण सखी देह करे जैन चैतन्य वर्णन श्रीवास ठाकुर इत्यादि महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं उनसे शक्ति प्रदान करने की याचना करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु का उचित ढंग से वर्णन कर सकूं। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने जो है बड़े उल्लास के साथ जगन्नाथपुरी में दिन बिताए, और अब जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव निकट आ गया। ए मत नाना रंग दिन कत गिला जगन्नाथ रथ यात्रा निकट हिला। तो महाप्रभु क्या करते हैं? सबसे पहले काशी मिश्र को बुलाते हैं, और मंदिर की देखरेख करने वाले को भी बुलाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। प्रथम काशी मिश्र प्रभु बुलाये परीक्षा पात्र सार्वभौम बुलाया अनिल। अब ये तीनों आए तो महाप्रभु ने क्या कहा उनसे? याचना की। याचना मतलब प्रार्थना की। क्या? कि वे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करना चाहते हैं। तीन जन्म पासे प्रभु हसिया कहिल गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नील। ये गुंडीचा मंदिर सातर में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो रथ यात्रा जानते कितनी लंबी होती है? जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक कितनी लंबी यात्रा है? 2 मील की रथ यात्रा है। और उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने आदि मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और एक सप्ताह वहाँ विश्राम करते हैं। तो गुंडीचा नाम पड़ा कैसे? राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो राजा इंद्रद्युम्न ने ही जगन्नाथ मंदिर बनवाया और जगन्नाथ जी की स्थापना कराई है। तो जब भगवान चैतन्य ने प्रार्थना की तो परीक्षा यानी जो मंदिर के निरीक्षक हैं, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करोगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। परीक्षा कहे आमी सम सेवक है तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य हमार। अब राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं तुरंत पूरा करूं। कौन है राजा? राजा कौन है? प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र बहुत बड़े भक्त थे, तो जानते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उनका आदेश था मंदिर के जितने भी कर्मचारी हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो भी आदेश है तुरंत पूरा करो। विशेष राजा रे आज्ञा हया छे अमारे, प्रभु आज्ञा जैसे शीघ्र करी बारे। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करना आपको शोभा नहीं देगा, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में मान लेते हैं। तो मार जोगे सेवा न है मंदिर है मार्जन, यही एक लीला कर ये तुम्हारे मन। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों की आवश्यकता होगी और झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, आप मुझे आदेश दें, मैं सारी चीजें तुरंत लाए देता हूँ। किंतु घटे सम्मार्जने बहुत चाहिए, आज्ञा दे आज सब यहाँ आने दिए। जो ही परीक्षा को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया, उसने तुरंत क्या किया, 100 नए घड़े और 100 झाड़ू ला करके दे दिए। नूतन एक सत्य घट सत्य सम्मार्जनी, परीक्षा आनी आ दिल प्रभु इच्छा जानी। अब अगले दिन सवेरा होते ही, यानी आज का दिन है, आज के दिन सवेरा होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सबों के शरीर पर क्या किया, चंदन लेप किया। मंदिर की सफाई के पहले अपने सब भक्तों के शरीर में क्या करते हैं, भगवान चंदन लेप करते हैं। आर देने प्रभाते लैया निज गण, गृहस्थ सवार अंगे ले पीला चंदन। फिर अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी। ये सम्मान है। भक्त का सम्मान क्या है, उसके हाथ में झाड़ू देना मंदिर की सफाई के लिए। चंदन लगाया और फिर उनके हाथ में झाड़ू दी। और उन सबों को अपने साथ लेकर महाप्रभु कहाँ गए, गुंडीचा मंदिर में गए। श्रीहस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला आपनी। इस तरह महाप्रभु और उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से क्या किया, मंदिर को बुहारा। बुहारा का मतलब है जितना मोटा मोटा कूड़ा है वो सब निकाला। गुंडीचा मंदिर गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जन ही लैया करी ले शोधन। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसी स्थान पर पुनः उसे रख दिया। भीतर मंदिर है ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मंदिर में जो चीज आप उठाते हो और साफ करते हो उसको उसी स्थान पर रखो, है ना। ऐसा नहीं कि सफाई कर दी और यहाँ से वहां रख दिया, वहां से यहाँ रख दिया, है कि नहीं? नहीं, ये पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम तब होता है जो चीज जहां से उठाई उसको वहीं पर रखना। इस तरह महाप्रभु और उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी और छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंतिम उन्होंने मंदिर और सभा स्थल के बीच के भाग को भी साफ किया। छोटे बड़े मंदिर कैला माजने शोधन पाछे तैछे सोधे ले श्री जगे मोहन। सैकड़ों भक्त मंदिर की चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। हा? भगवान देखो स्वयं काम कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए। चारी दिखे सतह भक्त सम्मार्जन करे अपनी शोधे ने प्रभु सिखाना सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। तो भगवान चैतन्य जब मंदिर को धो रहे हैं और साफ कर रहे हैं तो मुंह से क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का नाम बोल रहे हैं। हाँ, इस तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। प्रेमोला से शोधन लये न कृष्ण नाम भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। अब महाप्रभु कैसे हो गए हैं? उनका सुंदर शरीर धूल से धूसरित था और इससे भी अधिक सुंदर लगने लगे। धूल में भरे हुए भगवान और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखा, भगवान के शरीर की सुंदरता और बढ़ जाती है अगर धूल लगती है उनके शरीर में। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते हैं। क्यों मंदिर की सफाई करते हुए आंसू क्यों आते हैं महाप्रभु के? क्यों आते हैं? प्रेम के कारण आते हैं। तो कहीं कहीं तो इतने आंसू आते हैं कि आंसुओं से ही सफाई करते हैं। हाँ, तो भगवान में इतने आंसू आते हैं कि कहीं कहीं तो आंसुओं से ही धुलाई करते हैं, पानी की जरूरत ही नहीं है, इतने आंसू आते हैं। धूले धूसर तनु देखी ते शोभन कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। इसके बाद जहाँ अर्चक विग्रह का भोजन रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भोग मंदिर। भगवान का भोग मंदिर है, उसकी सफाई की। इसके बाद आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी कमरे साफ किए गए। भोग मंदिर शोधन करे शोधे ले प्रांगण सकल आवास क्रमे करीला शोधन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनको धूल और बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया, फिर अपने वस्त्र में बांध कर उन्हें बाहर ले जाकर फेंका। चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र सन्यासी है, तो सन्यासी का एक वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं? चादर। सन्यासी की एक चादर होती है, उसको बहिर्वास कहते हैं। उस चादर में भगवान ने क्या किया? जितने तिनके धूल और बालू के कण थे उठाए और मंदिर से बाहर ले गए। प्रणय धोले झिनपुर सब एकत्र करिया बहरवा से लैया खेलाए बाहर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के देखा देखी सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके और धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। ए मत भक्त जन करे निजे बाके प्रणय धोले बाहिरे खेलाए परम हरि से। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, अब महाप्रभु भक्तों से क्या कहते हैं कि मैं केवल ये देखकर कि किसने कितना तिनका और धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया है बतला सकता हूँ कि उसने कितना परिश्रम किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ये देखना चाहते हैं कि किसका ढेर ज्यादा बड़ा है, काय का ढेर? कूड़े का है? तो सब अपना अपना कूड़े का ढेर अलग अलग बनाओ, समझे? और मैं देखूंगा कि किसका ढेर ज्यादा बड़ा है। जिसने ज्यादा ढेर, जिसके ज्यादा ढेर है उसने ज्यादा सफाई की है। हाँ, कितनी अच्छी तरह से किसने सफाई की है ये मैं देखूंगा। प्रभु का है के कहते करिया से सम्मार्जन जन ढोले देखे ले जाने परिश्रम। ये गति सारे भक्तों ने
धूल का ढेर लगाया, किंतु चैतन्य महाप्रभु का ढेर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लीडर का, जो लीडर साहब है उनका सबसे बड़ा ढेर, सबसे बड़ा काम किया लीडर साहब ने चैतन्य महाप्रभु ने। समाध्या काम बोझा एकत्र करिन, सबा है तो प्रभुर बोझा अधिक है। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किया। देखा अभी सफाई पूरी हो गई लेकिन फिर अभी और सफाई करेंगे, कितना भी थोड़ा थोड़ा जो कण है धूल के उनको निकालना है, इसलिए फिर से भक्तों को अलग अलग क्या दिया, खंड यानी विभाजन कर दिया, कितना हिस्सा तुम्हारा इतना हिस्सा तुम्हारा, ऐसे भगवान ने हिस्सा पाता। यही मत अभ्यंतर करी ले मार्जन, पुनः सभा सारे दिल करिया बंधन। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबों को आदेश दिया कि वे सारी महीन धूल सिम के और बालू के कणों को बाहर फेंक कर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। सूक्ष्म धूल इस तरह कांकर सब कर दूर, भाल मते शोधन करा प्रभु अंतापुर। जब महाप्रभु और सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो महाप्रभु सफाई देकर अत्यंत सुखी हुए। सब वैष्णव लैया जब दुई बार सोचिली, देखी महाप्रभु मने संतोष है। जब मंदिर गुहारा जा रहा था तो 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लेकर तैयार खड़े थे और महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अभी तक क्या सुना हमने कि झाड़ू से मंदिर की सफाई की और जितना ऊपर ऊपर का कूड़ा है वो साफ किया, उसके बाद फिर हाथ से सफाई करना है, जितने भी ढोल के कण हैं एक एक चुनना है, गिनना है, चिंता गिनना है ना। देखिए कितनी अच्छी तरह से सफाई की योजना है चैतन्य महाप्रभु, हमको सीखना चाहिए। अब पानी से धुला जाएगा, अभी पानी से धुलाई होगी, पहले तो एक एक चिंता एक एक ढोल का कण निकाल लिया, अब पानी से धुलाई होगी, क्यों चमकाने के लिए है ना। जब तक पानी नहीं डाला जाएगा तब तक चमक नहीं आ सकती है ना, लेकिन सफाई बिल्कुल हो गई, एक एक झोल का कण निकाल दिया, अब जल से भरे। आर सत्य जन सत्य घटे जल भरी, प्रथम ही लैया आखे काल अपेक्षा करी। यही महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा कि सारे लोग तुरंत उन 100 घड़ों को भर भर कर ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिया। जल आन बने जब महाप्रभु कमिल, तबे सत्य घट आने प्रभु आगे दिल। इस तरह महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब फट दीवालें फर्श सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। प्रथम करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन, दुर्ग अधो गृह मध्य सिंहासन। फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब ये पानी नीचे की ओर आया तो फिर दीवारें और फर्श गिर गई। खापारा खड़िया जल उर्धो चल जल उर्धो छाजी। तब महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लगाकर महाप्रभु को देने लगे। श्री हस्ते कार्य ने सुना का मेरे मार्जन, प्रभु आगे चल आने दे भक्त। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे, हर एक के हाथ में झाड़ू थे जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। भक्त गण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में लाकर पानी देता है और कोई उनके चरण कमलों पर पानी गिराता है। गृह जल आने दे महाप्रभु करे, गृह जल दे पार चरण ऊपर। देखा कुछ भक्त महाप्रभु के हाथ में पानी दे रहे हैं तो कुछ पैरों में पानी दे रहे हैं। है? महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाला जो जल था वो कोई कोई चोरी चोरी पीने लगा है? अच्छा मौका मिला है महाप्रभु का ध्यान मंदिर की सफाई में, नहीं तो महाप्रभु थोड़ी ऐसा करने देते हैं। तो महाप्रभु की जानकारी में तो ये काम नहीं हो रहा है, तो पैर में पानी डाल रहे हैं और चोरी चोरी पीना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई उस जल को मांग रहा था तो कोई उस जल का दान कर रहा था, सबसे बड़ा दान तो यही है। तो वो चैतन्य महाप्रभु चरणों का दान है, तो यहाँ पर जो है दान भी शुरू कर दिया, दान देना शुरू कर दिया मंदिर की सफाई के बीच में। केह लेकर यहाँ करे कई जल पान, केह मांग लय के अन्य करे दान। जब कमरा घुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। घर धोई प्राण निकाय जल छाणी थी, कोई जल प्राण सब भरिया रह। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी। निजे वस्त्र कैला प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निजे वस्त्र माजी में सिंहासन। इस तरह सौधनों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों की तरह निर्मल हो गए।
जितना साफ कमरों को किया उतना ही भक्तों के मन स्वच्छ हो गए। सत घट जले हैला मंदिर मार्जन, मंदिर सोधिया कैला जेने ने जे मन। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध शीतल तथा मन भावन हो गया, मानो महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ हो। निर्मल शीतल स्निग्ध करिले मंदिरे, अपन हृदय जेन धरिले बाहिरे। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। देखा सरोवर में इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं है, तो लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं। सत सत जन जल भरे सरोवरे, घाट स्नान नाही के है कुपे जल भरे। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए ले जाते। पूर्ण कुंभ लैया ऐसे सत भक्त गण, शून्य घट लैया जय आर सत जन। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी को छोड़कर सारे लोग पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। हाँ, तो इतने जो भक्त हैं ये बहुत सीनियर हैं, तो इनको छोड़कर के बाकी जितने भक्त हैं सब पानी ला रहे हैं। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ बिनु आर सब आने जल भरी। लोगों के परस्पर भिड़ जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। घटे घटे ठेकी कते घटे भांगी गेन, सते सते घटे लोक तहां ले आए। कुछ लोग घड़े भर रहे थे और कुछ कमरों की धुराई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। देखा और कोई बात नहीं बोल रहे, सब केवल भगवान का नाम बोल रहे हैं और कोई बात नहीं बोल रहे हैं। जले भरे घर धोए करे हरे ध्वनि, कृष्ण हरे ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांग रहा था और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा दे रहा था। कृष्ण कृष्ण कही करे घटे रहे प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर समर्पण। देखा तो कृष्ण के नाम से ही सब काम होते हैं, जितनी बातें सब कृष्ण के नाम से होती हैं और कोई दूसरा किसी प्रकार की बात नहीं कर रहा है। जब किसी को कुछ कहना होता तो वह कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसा करता, अतः जैसे जो कुछ कहना होता उसके लिए कृष्ण नाम ही संकेत बन गया। जय जय कहे से कहा कृष्ण नामे, कृष्ण नाम है न संकेत सब कामे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम अविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो क्या होता था, वे सैकड़ों आदमियों का काम करते होते। देखा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के नाम से कितने उत्साहित होते हैं। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे सतजनेर काम। ऐसा लगता मानो महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हों। हाँ 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हैं। वे हर एक के पास ये शिक्षा देने के लिए पहुँचते कि किस तरह काम करना चाहिए। देखा लीडर साहब स्वयं काम करने में लगे हैं और सबके पास पहुँचते हैं समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि कैसे काम करना चाहिए। सत्यहस्ते करे न जिन छाला न मार्जन, प्रतिजन पासे जाई कराने शिक्षण। जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है तो बिना किसी मलाल के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते। मतलब चैतन्य महाप्रभु गुस्सा नहीं होते हैं लेकिन ऐसी बात बोलते हैं जिससे उसे शर्म आए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने नामी लीले करे पवित्र भर्सन। अब कैसे पवित्र भर्सना, पवित्र निंदा करते चैतन्य महाप्रभु। कैसे महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है। देखा वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो महाप्रभु क्या कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे भी इसी तरह से काम करें। तुम्हें बाल करे आचन सिखाई अन्य रे, ए मत भाल कर्म से हो जिन करे। जब लोगों ने सुना कि महाप्रभु ऐसा कहते हैं तो हर व्यक्ति लज्जित हो जाता, इस तरह भी बड़े ही मनोयोग से काम करते हैं। तो भगवान ऐसी बात बोलते हैं जैसे बुरी भी नहीं लगती है लेकिन जो जो गलती कर रहा है उसे समझ में आता है, उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। एकता सुनिया सभी संकुचित भाले मते कर्म करे सभी मन दिया। उन्होंने जगन्नाथ क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद मंदिर धोया गया, फिर अन्य स्थान भी धोए गए। सदे प्रक्षालन कैला श्री जगे मोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैला प्रक्षालन। इस तरह सभा भवन को धोया, समूचे प्रांगण को धोया, चबूतरों को धोया, रसोई घर को धोया और अन्य कमरों को भी अच्छी प्रकार से धोया। नाटशाला धोई धुईल चत्वर प्रांगण, पाकशाला आदि करे करिल प्रक्षालन। इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से स्वच्छ हो गए। मंदिर रे चतुर दिक प्रक्षालन कैला, तब अंतापुर भाल मते धोयाईला। जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो क्या हुआ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बंगाल से एक अत्यंत बुद्धिमान और सरल वैष्णव आया वहाँ और उसने क्या किया, महाप्रभु के चरण कमलों पर जल चढ़ाया। क्यों, बहुत बुद्धिमान था लेकिन बहुत सरल था इसलिए उसको दिक्कत हो गई। हेरे काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभु चरण योगे दिल घटे जल। तब उस गौड़ी ब्राह्मण ने उस जल को लेकर पिया, ये देखकर महाप्रभु कुछ कुछ दुखी और बाहर से क्रुद्ध भी हुए। से जल लैया आपने पान कैला, तहा देखी प्रभु मन दुख रोस हैला। देखा क्योंकि वो सरल था जिसने चैतन्य महाप्रभु के सामने ही उनके पानी का जल पी लिया। लेकिन जो दूसरे भक्त थे वो कर रहे थे ये काम लेकिन चोरी चोरी कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को पता ना चले तो ये जो है ना उनकी चालाकी थी। लेकिन ये जो भक्त था वो सरल था, चालाक नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सामने जल पी लिया। अब स्वाभाविक है चैतन्य महाप्रभु अगर भक्त की भूमिका कर रहे हैं तो वो नाराज होंगे ही। यद्यपि महाप्रभु से संतुष्ट थे किंतु धर्म की स्थापना करने के लिए वे बाहर से क्रोध हुए। यद्यपि गोसाई तारे हया छे संतोष धर्म संस्थापन लागी बाई रे महारोज। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कहे ले तारे ए देखे तुम्हार गौड़िया रे व्यवहारे। अपने गौड़िया के व्यवहार को देखो। भगवान कहते हैं इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर मेरे पांव धोए, ये तो अपराध किया। इससे बड़ा अपराध क्या किया कि उसने मेरा जल भी उसने वो जल भी पी लिया है। ईश्वर मंदिर मोर पद धोया इन से जल आपनी लिया पान कैल। मैं नहीं जानता इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी, तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे फजीहत में फंसा दिया है। ये तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मेरे ऊपर बड़ा अपराध डाल दिया है। ये अपराध मोर का हबे गति तुम्हारे गौड़िया करे ऐसे कैफे गति। हाँ तो तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि बंगाली वैष्णव तुम्हार गौड़िया है। इसका अर्थ हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के समस्त गौड़ी वैष्णव स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन है। तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ी वैष्णव की गर्दन पकड़ दी, उसे धक्का देकर गुंडीचापुरी मंदिर से बाहर कर दिया तथा उसे बाहर ही रहने दिया। तो स्वरूप दामोदर भी समझ गए कि अपराध तो कुछ नहीं किया, लेकिन सरलता के कारण उसे डांट पड़ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु के डांट से बचाने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या किया, उसको बाहर ही रहने दिया। तबे स्वरूप गोसाई तार घड़े हाथ दिया देता मारी पूरी बाहर राखी लेन लिया। मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। पुनः आसी पुनः प्रभु पाए करी ने विनय अज्ञ अपराध क्षमा करी तेज हो जाए। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को परम संतोष हुआ। तब उन्होंने सारे भक्तों को दो पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने को कहा। तबे महाप्रभु रमने संतोष हईला सारी करी दुई पासे सबारे बसैला। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह के तिनके बालू के कण और गंदी वस्तुएं चुनने लगे। देखा भगवान स्वयं लीडर है, वो बीच में बैठे हैं और भक्तों को दिखा रहे हैं। तो भगवान जैसा कर रहे हैं चारों तरफ से भक्त लोग देख रहे हैं, तो वो भी अपने अपने स्थान में क्या कर रहे हैं, तिनके बालू और कण चुन रहे हैं, एक एक उठा रहे हैं। आपने बसिया माजे अपना रहते तृण कांकर कुटा लागेला कुड़ाई ते। तिनके और बालू के कण सुनते हुए महाप्रभु ने कहा मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उससे कहूंगा कि वह जुर्माने के रूप में क्या करे, मीठी रोटी और मीठा चावल दे। के कहते कूड़ा है सब एकत्र करें जार अल्पता रटाई पीठा पाना लई। इस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे और स्वच्छ थे, मानो निर्मल और शांत मन हो। ए मत सब है पूरी करीला शोधन शीतल है निर्मल है कैला जिन निज मन। जब सारे कमरों का पानी बैठक से होकर निकाला गया तो लगा कि नई नदी समुद्र से मिलने जा रही है। बैठक का मतलब ऐसा स्थान जहाँ की ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, तो उस स्थान में बहुत पानी भरा था। तो वहां से जब पानी निकला जो इकट्ठा हुआ था तो कैसा लगा, किसे एक नई नदी समुद्र से मिल रही है। प्रणाली का छाड़े जदी पानी बहाइल नूतन नदी जन समुद्र मिलिल। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई यह नहीं बता सकता कि ये सब कैसे हुआ। ए मत पूरे द्वारे आगे पथ जत सकल सोधिल तहा के बरनी बेकत। महाप्रभु ने नरसिंह मंदिर की भी भीतर और बाहर से सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया और तब भी नाचने लगे। निसिंगे मंदिर है भीतर बाहर है सुधिल, क्षण के विश्राम करी नित्य आरम्भिल। तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं कि नरसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर से बाहर ही एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में भी नरसिंह मंदिर है जहाँ पर यही उत्सव मनाया जाता है, जैसा कि मुरारी गुप्त ने अपनी पुस्तक चैतन्य चरित में लिखा है। हाँ, अब आगे क्या हुआ कि सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। सारा दिखे भक्त गण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करेन प्रभु मत्त सिंह सम। आज जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं तो क्या होता है, पसीना कप कपी विवर्णता आंसू हर्ष और हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं ने उनके शरीर को गीला कर दिया और केवल शरीर को गीला नहीं किया, उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीरों को भी गीला कर दिया। स्वेद कंपे वैवर्ण्य अश्रु पुल के हुंकार, निज अंग धोई आगे चले अश्रुधाम। इस तरह महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीरों को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास के बादल हों। तो भगवान के अश्रु कैसे गिरते हैं, जैसे पिचकारी हो, ऐसे बहते नहीं है जैसे सामान्य आंसू बहते हैं। इसलिए पिचकारी की तरह जब आंसू जो है बाहर आंखों के बाहर जब गिरते हैं तो आसपास के सब लोग गीले हो जाते हैं। चारिज के भक्त अंग कैला प्रचलन, श्रवणेर में गजन करे बरेसन। महान और जोर जोर से उच्चरित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा और महाप्रभु के कूदने और नाचने से पृथ्वी हिलने लगी। देखा, पृथ्वी आकाश दोनों प्रभावित हैं। आकाश आवाज से गूंज रहा है और पृथ्वी महाप्रभु के कूदने से हिल रही है। महा उच्च संकीर्तन आकाश से भरिल, प्रभु उद्दंड नृत्य भूमि कंप हिल। महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का संकीर्तन बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जोर जोर से संकीर्तन होता है उनका। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊपर उछलते थे। स्वरूप रे उच्च गान प्रभु रे सदा भाय, आनंद उदंड नृत्य करे गौरे राय। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे, अंत में परिस्थिति को समझ बूझ कर वे रुक गए। यही माते कत क्षण नृत्य ये करिया, विश्राम करीला प्रभु समय बूझिया। तब महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। आचार्य गोसाईर पुत्र श्री गोपाल नाम, नृत्य करी ते तारे आज्ञा दिल गौरे धाम। अब क्या हुआ, श्री गोपाल को आदेश मिला तो प्रेम आवेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रेमावेश नृत्य करी है ना मूर्छिते, अचेतन है आते है पड़ीला भूमि ते। अब जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैताचार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर किसकी सांस नहीं चल रही है, वे अत्यंत चिंतित हो उठे। आज से व्यस्त आचार्य सारे कहल कोले, श्वास रहे ते देखी आचार्य हिल विकले। अद्वैताचार्य और अन्य लोग भगवान नरसिंह के नाम का उच्चारण कर करके जल छिड़कने लगे। उस चरण की हुंकार इतनी तेज थी कि सारा ब्रह्मांड हिलने जैसा लगा। निसिंगे रे मंत्र पड़ी मारे जल छाटी, हुंकारे रे संदे ब्रह्मांड जाए फाटी। जब श्री गोपाल को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैताचार्य और अन्य भक्तगण क्रंदन करने लगे। अनेक करिले तब नाहे चेतन, आचार्य कांदे न कांदे सबे भक्तगण। तब महाप्रभु ने श्री गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोले, गोपाल उठो। तबे महाप्रभु तार बुके हस्ते दिल, उठे गोपाल बलि उच्चे स्वर कहिल। हाँ, अब क्या हुआ, देखा कितना आश्चर्य। जो ही गोपाल ने महाप्रभु की वाणी सुनी उसे तुरंत चेत हुआया, अतः सारे भक्त हरि का नाम ले लेकर नाचने लगे। सुनित गोपाले रन हरि ले चेतन हरि बलि नृत्य करे सर्वे भक्त गण। अब विश्राम करने के बाद महाप्रभु और सारे भक्त क्या करते हैं, स्नान करने चले गए। तबे महाप्रभु क्षण एक विश्राम करिया स्नान करी बारे केला भक्त गण लिया। स्नान के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने, फिर पास ही के मंदिर में स्थित नरसिंह देव को नमस्कार करके बगीचे में आए। तेरे ओठे परेन प्रभु सुसके बसन नरसिंह देवे नमस्कारी गेला उपेवन। उस बगीचे में महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। तभी बाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद लेकर आए। उद्याने बसीला प्रभु भक्त गण लिया तबे बाणीनाथ आईला महाप्रसाद लिया। कितना अच्छा ये भगवान का कार्यक्रम है। सवेरे उठ करके मंदिर की सफाई की और उसके बाद कुछ विश्राम किया, फिर नृत्य किया, फिर कुछ विश्राम किया, फिर स्नान किया, अब प्रसाद शुरू हुआ। अब काशी मिश्र और एक भक्त है तुलसी जो मंदिर की देखरेख करने वाले थे, दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस प्रसाद में क्या था, चावल रोटियां खीर और तरकारियां थी। इन्हें देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। सत्य अन्य पिठा पाना सब पटाइन देखी महाप्रभु मने संतोष है। महाप्रभु के पास उपस्थित भक्तों में परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु थे। पुरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य आर्य प्रभु नित्यानंद। वहां पर और भी भक्त थे, कौन, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर, नंदनाचार्य, राघव पंडित और वक्रेश्वर भी उपस्थित थे। आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास गदाधर शंकर नंदनाचार्य आर्य राघव वक्रेश्वर। महाप्रभु की आज्ञा पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त कहाँ बैठे, चबूतरे पर, और वो चबूतरा लकड़ी का बना हुआ है, इसे पिंडार कहते हैं। प्रभु आज्ञा पाया वैसे आपने सार्वभौम पिंडार ऊपर प्रभु वैसे लिया भक्तगण। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। तारे तले करी अनुक्रम उद्यान भरी वैसे भक्त करी ते भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु देखो पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, बार बार हरिदास हरिदास पुकार रहे हैं, और हरिदास दूर खड़े हैं, इसलिए वो हरिदास अब दूर से बोले। हरिदास बले प्रभु डाके गण गण दूरे रही हरिदास करे निवेदन। अब हरिदास क्या कहते हैं, महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करें, क्योंकि मैं निंदनीय हूँ अतएव आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। देखा कितनी विनम्रता है हरिदास ठाकुर की, क्योंकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए इसलिए अपने को निंदनीय कह रहे हैं। भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार ए संगे बसीते योग्य नहीं मुही छान। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि गोविंद जो आपका सेवक है बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद ले जाएगा। महाप्रभु ने उनके मन की बात जानकर फिर से नहीं पुकारा। तो हरिदास ठाकुर की भावना क्या है, कुत्ते जैसे, कुत्ता जैसे दूर रहता है और जब आप भोजन कर चुके हैं तो फिर वो आता है, जो जूठा बचा है वो खाने के लिए आता है। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब आप खा लेंगे तो फिर जो बचेगा वो मुझे गोविंद दे देंगे। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद जीवे बहे द्वारे मन जाने प्रभु पुनः न बलि ले तारे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद, दामोदर पंडित, काशीश्वर, गोपीनाथ, बाणीनाथ और शंकर ने प्रसाद बांटा और भक्तगण बीच बीच में हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। स्वरूप गोसाई, जगदानंद, दामोदर, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ, शंकर परिवेशन करे ताहा ए सात जन
मध्ये मध्ये हरि ध्वनि करे भक्त गण।
जिस तरह श्री कृष्ण ने पहले जंगल में भोजन किया था महाप्रभु को, वही लीला याद हो थी। हाँ देखा, भक्तों के साथ भोजन कर रहे हैं तो भगवान को कृष्ण अवतार की जो लीला है वो याद आई। बोले न भोजन कृष्ण पूर्व जैसे कैलाम कई लीला महाप्रभु मन स्मृति हैलाम। श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण मात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेमावेश हुआया, किंतु समय और परिस्थिति को देखते हुए वे कुछ कुछ धीर बने रहे। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया जब भोजन हो रहा है तो भोजन के बीच में अगर कुछ उनको प्रेमावेश होगा तो फिर भोजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आवेश को संभाल लिया। यद्यपि प्रेमावेश प्रभु हैला अस्थिर समय बोझिया प्रभु हैला किछु धीर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब क्या कहते हैं भगवान कि मुझे साधारण तरकारी दो और भक्तों को परोसो क्या पीठा खीर अमृत गुटिका अच्छे अच्छे व्यंजन परोसो और मुझे क्या दो खाली सब्जी दो साधारण तरकारी दो। प्रभु कहे मोरे दे लापरा व्यंजने पीठा पाना अमृत गुटिका दे भक्त गणे। भगवान में देखो कितना त्याग है कि भक्तों को कहते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं कि अच्छे से भोजन दो और मुझे केवल साधारण तरकारी दो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, अतः वे जान गए कि किस व्यक्ति को कौन व्यंजन पसंद है, इसलिए उन्हें स्वरूप दामोदर के हाथों से उन व्यंजनों को भरपेट परोसा परोसवाया। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को समझ कहते हैं इनको ये दो इनको ये दो, क्यों भक्त जिन भक्त को जो अच्छा लगता है वो तो नहीं मांगते, उन्हें संकोच होता है और भगवान जानते हैं इनको ये अच्छा लगता है, तो वही चीज उनसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परोसवाते हैं। इस प्रकार से सब भक्तों को भरपूर भोजन खिलवाया। सर्वज्ञ प्रभु जाने जारे जय भाई तारे तारे से देव आये स्वरूप द्वारा। अब देखो चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तो कुछ अच्छा भोजन नहीं खा रहे हैं, लेकिन जगदानंद प्रसाद वितरण करने आए, उन्होंने अकस्मात सर्वश्रेष्ठ व्यंजन महाप्रभु के पत्तल में परोस दिया। देखा कितना साहस, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करने का साहस करता। इन जगदानंद जानते हो कौन है, सत्यभामा है। सत्यभामा जल्दी जुड़ जाती थी कृष्ण से और कृष्ण मनाते रहते थे, तो जगदानंद अगर जुड़ जाए गुस्सा हो जाए तो 3 दिन भोजन नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु डरते हैं जगदानंद से, इसलिए जगदानंद बेड़ाए परिवेशन करीते प्रभु पाते भाले द्रव्य देने आचंबिते। जब महाप्रभु के पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद परोसा जगदानंद ने तो बाहर से तो गुस्सा दिखाई दिए, किंतु फिर भी जब किसी न किसी बहाने से उनकी पत्तल पर व्यंजन परोस दिए जाते तो महाप्रभु को बहुत संतोष होता। अंदर से प्रसन्न होते हैं महाप्रभु, जब बाहर से कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। यद्यपि देने प्रभु तारे करें रोशन भले चले तबो देन दिले से संतोषन। जब इस तरह भोजन परोस दिया जाता तो महाप्रभु कुछ समय तक उसे देखते रहते, किंतु जगदानंद के भय से वे उसमें से कुछ न कुछ खा रहे थे। जगदानंद का बहुत डर है कि गुस्सा न हो जाए, तो जगदानंद का परोसा वो जरूर चैतन्य महाप्रभु को खाना पड़ता। पुनरापि से द्रव्य करे निरीक्षण तारे भय प्रभु किछु करे न भक्षण। महाप्रभु जानते थे यदि जगदानंद द्वारा परोसा गया भोजन नहीं खाएंगे तो वे उपवास करने लगेंगे, इस भय से महाप्रभु ने उनके द्वारा दिए गए प्रसाद में से कुछ अंश खा लिया। न खाए ले जगदानंद करीबे उपवास तार आगे किछु खान मन ए प्रासन। तब स्वरूप दामोदर गोसाई कुछ उत्तम मिठाइयां ले आए और महाप्रभु के सामने उन्हें अर्पित किया। स्वरूप गोसाई भाल मिश्र प्रसाद लिया प्रभु के निवेदन करे आगे दांडाइया। अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी कैसे चैतन्य महाप्रभु खिलाते हैं, कहते हैं इस महाप्रसाद में से थोड़ा लीजिए और देखिए भगवान जगन्नाथ ने कैसे प्रसाद ग्रहण किया है। उसका भोग जगन्नाथ जी ने भोग प्राप्त किया है तो इसको आप जरा चखो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को खाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इस ढंग से कहा रूप दामोदर गोस्वामी ने। हे महाप्रसाद अल्प कर आस्वादन देखे जगन्नाथ कैसे कर या छिन्न भोजन। ठीक है, कर रूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु के सामने कुछ भोजन रख दिया और महाप्रभु ने उसे स्नेह बस खा लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो जो विशेष भक्त हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और जगदानंद, इनकी हिम्मत है कि चैतन्य महाप्रभु को विशेष प्रसाद जो सुंदर और स्वादिष्ट है वो भोजन करा सकते हैं। स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद ने महाप्रभु को बारंबार वही भोजन दिया, इस तरह उन्होंने महाप्रभु के साथ स्नेह व्यवहार किया, ये अत्यंत असामान्य बात थी। हे मत दुई जन करे बार बार विचित्र दुई भक्तेर इसमें है व्यवहार। महाप्रभु ने सार्वभौम को अपने बाएं बैठा लिया। सार्वभौम स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद का व्यवहार देख देख कर हंसने लगे। सार्वभौम प्रभु वासाई छेन वाम पासे दुई भक्तेर इसमें है देखी सार्वभौम हासे। महाप्रभु सार्वभौम को भी उत्तम भोजन देना चाहते थे, अतः उन्होंने परोसने वाले से बार बार उनकी पत्तल में उत्तम भोजन परोसने को कहा। सार्वभौम देयान प्रभु प्रसाद उत्तम स्नेह करे बार बार कराने भोजन। गोपीनाथ आचार्य ने भी उत्तम भोजन लाकर मधुर वचन कहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रदान किया। गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद आने सार्वभौम दिया कहे सुमधुर बाणी। अब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उत्तम भोजन परोसने के बाद क्या कहा, जरा विचार करें कि सार्वभौम भट्टाचार्य का पूर्ववर्ती संसारी आचरण कैसा रहा होगा। जरा विचार करें किस तरह में किस तरह इस समय में किस तरह दिव्य आनंद भोग रहे हैं। कहा भट्टाचार्य रे पूर्व जन व्यवहार कहा ए परमानंद करा है बेचन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं पहले अल्प बुद्धि तारके था, फिर भी आपकी कृपा से मुझे ये भक्ति का ऐश्वर्य प्राप्त हो सका है। सार्वभौम कहे आमी तार्क के को बुद्धि तुम्हार प्रसाद मोर ए संपत्ति सिद्धि। और सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त इतना दयावान कौन हो सकता है, उन्होंने एक कौवे को गरुड़ बना दिया है। देखा सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि मैं पहले कौवा था, अब चैतन्य महाप्रभु ने मुझे क्या बना दिया है, गरुड़ बना दिया है, भला इतना दयावान और कौन हो सकता है। महाप्रभु बिना के हम ना ही दयामय ताके रे गरुड़ करे ऐसे कौन है। हाँ, तार्किक रूपी प्यारों के साथ में भौम हो करता था। देखा सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं पहले प्यार था भौम हो करता था, यानी जितने प्रवचन थे मायावादी प्रवचन वो क्या है, प्यारों का या कुत्तों का भौमो है, अब मैं उसी मुख से कृष्ण और हरि नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तारके के श्रे गाले संगीन देव देव करे से मुख्य ए बे सदा कही कृष्ण हरि। कहा मैं अभक्त तार्किक शिष्यों की संगति में रहता था, कहा अब मैं भक्तों के संग रूपी अमृत के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। कहा महिर मुख्य तार्किक के शिष्य गण संगे कहा ए संग सुधा समुद्र तरंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना सम्मान देते हैं, कहते हैं तुम अपने पूर्व जन्म में कृष्ण भावनामृत में रहे थे, तुम कृष्ण से इतना प्रेम करते हो कि तुम्हारी संगति से हम लोगों में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो रही है। प्रभु कहे पूर्व सिद्धन कृष्ण तुम्हार प्रीति तुमा संगे आमा सबार हैले कृष्ण मती। इस तरह तीनों लोगों के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जो भक्तों की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखता हो और उन्हें संतोष प्रदान करता हो। भक्ते महिमा बढ़ाई ते भक्ते सुख जीते महाप्रभु बिना अन्य नहीं ही जगते। तब महाप्रभु ने जगन्नाथ जी पर चढ़ाया हुआ सारा पीठापना लेकर हर भक्त को बुला बुला कर उनमें वितरित कर दिया। सबे प्रभु प्रत्येषम भक्तेर नाम लिया पीठापना देव आयल प्रसाद करियम। श्री अद्वैताचार्य पास पास बैठे और जब प्रसाद बांटा गया तो एक दूसरे से वो क्रीड़ा कलह लग गए। क्रीड़ा कलह मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, तो देखने में लगता है एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की प्रसन्नता थी। अद्वैत नित्यानंद में बसी आखे एक ठाई भेजन क्रीड़ा कलह लागे लेता थाई। उसके बाद सारे वैष्णवों का नाम ले लेकर महाप्रभु ने महाप्रसाद वितरित किया, मानो उसमें अमृत छिड़का गया हो। उस समय अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु की जो क्रीड़ा कला थी वो अधिक अधिक रोचक लग रही थी। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लिया महाप्रसाद देन महा अमृत सिंचियम। भोजन करने के बाद सारे वैष्णव हरि हरि की ध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए। ये हरि ध्वनि स्वर्ग लोक और मृत लोक में भर गयी। भोजन करी उठे सबे हरी ध्वनि करी हरी ध्वनि उठिल सबे स्वर्ग मरते भरी। इसके बाद महाप्रभु ने अपने सारे भक्त संगियों को अपने हाथ से फूल मालाएं और चंदन लेप प्रदान किया। सबे महाप्रभु सब निजे भक्त गणे सबा कारे श्रीहस्ते दिला माले चंदने। प्रसाद वितरण में लगे स्वरूप दामोदर आदि सात भक्तों ने इसके बाद कमरे के भीतर भोजन किया। सबे परिवेशक स्वरूप आदि सात जन गृह भीतर कैला प्रसाद भोजन। फिर क्या हुआ, गोविंद ने महाप्रभु द्वारा छोड़े गए जूठन को सावधानी से रख दिया और बाद में इसमें से कुछ अंश हरिदास ठाकुर को ला कर दिया। प्रभु रे अवशेष गोविंद राखे ले धरिया कई अन्न हरिदास किछु दिल लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के जूठन को बाद में उन भक्तों में विस्तृत किया गया जिन्होंने याचना की, और फिर जो कुछ बचा उसे स्वयं गोविंद ने खाया। भक्त गण गोविंद पास किछु मांग नील कई प्रसादान गोविंद आपा नहीं पाईल। परम स्वतंत्र भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गुंडीचा मंदिर की धुलाई और सफाई उसमें से केवल एक लीला है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नान खेला दोया पाखाला नाम कैला एक लीला। इस तरह से हमने गुंडीचा मंदिर की सफाई का जो प्रसंग है चैतन्यचरितामृत से पढ़ के सुनाया। अब एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में तात्पर्य लिख रहे हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत शशी ठाकुर की बात बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह शुद्ध और शांत हृदय में भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई ये चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है। क्या कहा है, ये तो दर्पण मार्जनम। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है हृदयं च सोह भद्राणी। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। इसका परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा, ये तो दर्पण मार्जनम। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी 1:2:17 ये पुष्टि हुई है। श्रृणमताम तो कथा कृष्णाम पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनो तेतुरताम। श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हृदय की है, वे उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को दूर करते हैं जो उनके उन संदेशों का आस्वादन करता है जो ठीक से सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होते हैं। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रृणवताम तो कथा कृष्ण हम, ये सीधी सादी विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे क्योंकि वे पहले से ही वहाँ विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वे प्रत्येक हृदय के भीतर रहते रहें और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपना हृदय उसी तरह स्वच्छ रखना चाहिए जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ बनाया था। अतएव भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल करना होता है जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण या धूल भरी हो, ये सब क्या है? अन्याभिलाषिता, तो उसमें भगवान को नहीं बिठाया जा सकता। हृदय को स्वच्छ करना होगा। किस किस से? कर्म से, ज्ञान से, योग से और ध्यान से प्राप्त समस्त भौतिक मंतव्यों से स्वच्छ रखना होगा। जैसा किसी रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माजना व्रतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाहरी मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति और ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, अच्छा ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानों के प्रेम की सहज वृद्धि के विरुद्ध हैं। जो ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतः कृष्ण के विराजने के लिए वो स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उसमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। भौतिक इच्छा की व्याख्या है क्या? भौतिक जगत को डटकर भोगने की इच्छा, ये आधुनिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट के समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय विचलित रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने ठीक ही कहा है, संसार बिसाना ले दीवाने सी ही आ जले जुड़ाई के न कैनु उपाय। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य की चेष्टा भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। भौतिक भोग के अंतर्गत पुण्य कर्म, दान, तपस्या, स्वर्ग लोक प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुख पूर्वक जीवन यापन करना ना? ये सब चीजें हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से ये धूल उड़ती होती है तो ये हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से ढक जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि उनके हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन क्यों रहते हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कलमश रूपी धूल से ढका हुआ समझा जाता है। कर्मी लोग क्या सोचते हैं? सकाम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। ये एक भूल है। यदि वह ऐसी भावना के बहकावे में आता है तो वह अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितनी अच्छी तरह से क्यों ना स्नान करे, नदी से बाहर निकलते ही वह अपने सारे शरीर पर धूल डाल देता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं के द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता है। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके भगवत भक्ति में अपनों को लगाता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है।
धन्यवाद। श्री गुंडीचा मार्जन महोत्सव के जगत गुरु शिला